भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय एक मनु की पुत्रियों की वंशावली। श्री मैत्रेय ने कहा, स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनके नाम आकुति, देवहूति तथा प्रसूति थे। आकुति के 2 भाई थे, तो भी राजा स्वयंभू मनु ने इसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याह था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी शतरूपा के परामर्श से ऐसा किया था। अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति रुचि को उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से 1 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुए। आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से 1 अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार थी। स्वयंभू मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके जामाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, बद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव तथा रोचन। स्वयंभू मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए, जिन्हें संयुक्त रूप में तूषित कहा जाता है। मरीचि सप्त ऋषियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। स्वयंभू मनु के दोनों पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद अत्यंत शक्तिशाली राजा हुए और उनके पुत्र तथा पौत्र उस काल में 3 लोकों में फैल गए। हे पुत्र, स्वयंभू मनु ने अपनी परम प्रिय कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को प्रधान किया। मैं इनके संबंध में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ और तुम उनके विषय में प्रायः पूरी तरह सुन चुके हो। स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दे दी, जो प्रजापतियों में से 1 थे। दक्ष के वंशज 3 लोकों में फैले हुए हैं। मैं तुम्हें कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले ही बतला चुका हूँ कि वे 9 ऋषियों को सौंप दी गई थी। अब मैं इन 9 कन्याओं की संतानों का वर्णन करूँगा। तुम मुझसे उनके विषय में सुनो। कर्दम मुनि की पुत्री कलह का ब्याह मरीचि से हुआ, जिससे दो संतानें हुई, जिनके नाम थे कश्यप तथा पूर्णिमा। इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गई। हे विदुर, कश्यप तथा पूर्णिमा नामक दो संतानों में से पूर्णिमा के तीन संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम विरज, विश्वग तथा देवकुल्या थे। इन तीनों में से देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमल को धोने वाला जल थी, जो बाद में स्वर्ग लोक की गंगा में बदल गई। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने तीन सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। ये हैं तोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के अंशावतार थे। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा शिव जी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। यह सुनकर विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे गुरु, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सत्रष्टा, पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? मैत्रेय ने कहा, अनुसुईया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया, तो वे अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। उस पर्वत घाटी में निर्विंद्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे हैं। वहां झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुंचे। वहां पर मुनि ने योगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूं, वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे तो उनके प्राणायाम के कारण उनके शिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोकों के तीन प्रमुख देवों ने देखा। उस समय ये तीनों देव स्वर्ग लोक के वासियों यथा अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम पहुंचे। इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था। मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने ज्यों ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं, तो वे उन्हें देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक ही पांव से उनके निकट पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों की स्तुति की, जो अपने अपने वाहनों, बैल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे और अपने हाथों में डमरू, कुश तथा चक्र धारण किए थे। मुनि ने भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली, किंतु पहले से उनका हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था। अतः जिस प्रकार उन्होंने होश संभाला और वे हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख अधिष्ठाता देवों की मधुर शब्दों से स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार करके अपने को तीन शरीरों में विभक्त कर लिया है। जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार करने के लिए करते आए हैं, मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रार्थना में आप में से किसको बुलाया था। मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आवाहन किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। मैत्रेय महामुनि ने कहा, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कराए और उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है और इसलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं, अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोम देव उत्पन्न हुए, विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय और शंकर शिवजी से दुर्वासा उत्पन्न हुए। अब तुम मुझसे अंगीरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। अंगीरा की पत्नी श्रद्धा ने चार कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम सिनीवाली, कुहु, राका तथा अनुमति थे। इन चार पुत्रियों के अतिरिक्त उसके दो पुत्र भी थे, उनमें से एक उत्तथ्य कहलाया और दूसरा महान विद्वान बृहस्पति था। पुलस्त्य के उनकी पत्नी हवीरबु से अगस्त्य नाम का एक पुत्र हुआ, जो अपने अगले जन्म में दहन अग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलस्त्य के एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ, जिसका नाम विश्रवा था। विश्रवा की दो पत्नियां थी। प्रथम पत्नी इडविडा थी, जिससे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ। दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था, जिससे तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ये थे रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। पुलह ऋषि की पत्नी गति ने तीन पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वरियान तथा सहिणु। ये सभी महान साधु थे। क्रतु की पत्नी क्रिया ने वाल्खिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से देदीप्यमान था। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है, चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। इन 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्भण, वसुभृध्यान तथा द्युमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ति ने अश्वशीरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दध्यंश कहलाया। अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो। भृगु मुनि अत्यधिक भाग्यशाली थे। उन्हें अपनी पत्नी ख्याति से 2 पुत्र दाता तथा विधाता और 1 पुत्री श्री प्राप्त हुई। वह श्री भगवान के प्रति अत्यधिक परायण थी। मेरु ऋषि की 2 पुत्रियां थी, जिनके नाम आयति तथा नियति थे, जिन्हें उन्होंने दाता तथा विधाता को दान दे दिया। आयति तथा नियति से मृकंड तथा प्राण नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मृकंड से मार्कंडेय मुनि और प्राण से वेदशीरा ऋषि उत्पन्न हुए। वेदशीरा का पुत्र उष्णा शुक्राचार्य था, जो कवि भी कहलाता है। इस प्रकार कवि भी भृगुवंशी था। हे विदुर, इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ी। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है, वह समस्त पाप बंधनों से छूट जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नयनी सुंदर कन्याएं उत्पन्न की। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और 1 अग्नि को पत्नी रूप में प्रदान की गई। शेष 2 कन्याओं में से 1 पृथ्वीलोक को दान दे दी गई, जहां वह प्रेम पूर्वक रह रही है, और दूसरी कन्या भवबंधन से समस्त पापियों के उद्धारक शिव जी को दी गई। दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया, उनके नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरे तथा मूर्ति। इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया, जो इस प्रकार हैं: श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद, पुष्टि ने समय, क्रिया ने योग, उन्नति ने धर्म, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम तथा हरि ने प्रक्षय को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था। प्रत्येक का मन शांत था और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियां तथा पर्वत मनोहर लगने लगे। स्वर्ग लोक में भाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर स्तुतियां अर्पित की। देवताओं ने कहा, हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं और जिन्होंने सृष्ट जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है। हम देवताओं पर कृपा पूर्ण दृष्टिपात करें, उनकी कृपा पूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान की पूजा की। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंध मादन पर्वत की ओर चले गए। नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार हैं और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। अग्नि देव की पत्नी स्वाहा से 3 संतानें उत्पन्न हुई जिनके नाम पावक, पवमान तथा शुचि हैं, जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। इन 3 पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्नि देव हैं। अतः अग्नि देवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामह को मिलाकर 49 है। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता ये ही 49 अग्नि देव हैं। अग्निश्वास, बहिर्षद, सौम्य तथा आज्यप ये पितर हैं। वे या तो साग्निक हैं अथवा निरग्निक। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वदा है, जो राजा दक्ष की पुत्री है। पितरों को प्रदत्त स्वदा ने वयुना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी। इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिवजी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद के अंतर्गत मनु की पुत्रियों की वंशावली नामक 1st अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।